नमो सिद्धाण नमो वायर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सव्वसाहूण ईसो पंच नमो यारो सव्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं अधमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहु मंगलम केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतलवायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणम पद के ऊपर विवेचन चल रहा था। केवल इन 7 अक्षरों को लेकर जो पूर्वाचार्यों ने महिमा मंडन किया है नमोकार का, वह महिमा मंडन जैसे सामान्य प्रसंगों पर जो महिमा मंडन किया जाता है उससे भिन्न है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य एक बड़ा महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक लिखते हैं, जिस श्लोक में नमोकार की ही महिमा का कथन करते हुए वो अपनी बात कहते हैं। सुनकर थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, कुछ हंसी भी आएगी। अभी तक अपन ने नमो अरहंताणम इस पद को लेकर के तीन विधियों पर अपना ध्यान डाला था। उन तीन विधियों में एक विधि तो ऐसी थी कि जो ज्ञानार्णव ग्रंथ में ही पदस्थ ध्यान के प्रकरण में जो 38वां प्रकरण है, यानी 38 चैप्टर है वो ज्ञानार्णव का, उसमें उन्होंने नमोकार की एक आराधना विधि बताई है और उसमें केवल प्रथम पद लिया है। और वो ऐसा है स्फुरद विमल चंद्राभे दलाष्टक विभूषिते कंजे तत्कर्णिकासीनम मंत्रम सप्ताक्षरं स्मरेत। एक कमल की कल्पना करें जो चंद्रमा जैसा श्वेत है, श्वेत कमल भी आते हैं और यहाँ पर निकटवर्ती सरोवर में श्वेत कमल भी है, गुलाबी कमल भी है। तो श्वेत कमल को कैरव कहते हैं। अलग अलग कमलों के अलग अलग नाम हैं। उत्पल लाल कमल को कहते हैं, नीलोत्पल नील कमल को कहते हैं। तो एक श्वेत कमल की कल्पना करें और दिग्दलेशु ततोन्येशु विदिक्पत्रेष्वनुक्रमात् सिद्धादिकं चतुष्कंच दृष्टिबोधादिकं तथा। ये भी एक ध्यान करने का तरीका है। इसमें पूरे पूरे नमोकार का ध्यान है, एकदम बीचों बीच कर्णिका में नमो अरिहंताणम, फिर दिशाओं वाले पत्तों पंखुड़ियों में नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सवसाणम, और विदिशाओं में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक तप। नमो दंसनाणम नमो नाणाणम, क्रम ऐसे आगे पीछे भी होता है, नमो नाणाणम नमो दंसनाणम नमो चरितानम नमो तवाणम, ये हमने आपको बताया भी था। और ये श्लोक जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये था, दो श्लोक है। प्रथम श्लोक में तो लिखा है श्रियमात्यंतिकीं प्राप्ता योगिनो येत्र केचन अमुमेव महामंत्रन ते समाराध्य केवलम। अनादिकाल से वर्तमान पर्यंत अद्य यावत आज तक जो योगी जन इस मनुष्य लोक में, वो कोई भी क्यों ना हो, जो भी योगी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं वे केवल इस महामंत्र की भली भांति आराधना करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और इसके उपरांत जो श्लोक है वो बहुत ही मजेदार है। 38वें प्रकरण के 41वें और 42वें श्लोक को हम अभी पढ़ के सुना रहे हैं। 41वां बता चुके हैं। प्रभावमस्य निःशेषम् योगिनामप्यगोचरम् अनभिज्ञो जनो ब्रूते यह स मन्ये निलार्दितः। नमोकार का संपूर्ण प्रभाव बड़े बड़े योगियों का भी विषय नहीं है, अर्थात जो हमेशा ध्यान में लीन रहने वाले मेरु पर्वत की तलहटी में विराजमान महातपस्वी योगी जन आज भी वहां तपस्या कर रहे हो, वहां के वनों में, वहां के उपवनों में, वहां के कुंजों में, वहां के सरस तटों में जो तपस्या में लीन है, ऐसे बड़े बड़े योगियों के भी, उनका भी नमोकार का संपूर्ण प्रभाव उनका भी विषय नहीं है, वो भी नहीं जानते। तो फिर आचार्य कहते हैं कि यहां इस पंचम काल में मनुष्यों के पास ज्ञान है ही कितना। मन्ये, मैं समझता हूं कि यदि आज का कोई मनुष्य जो यह अनभिज्ञ जन अस्य नमोकारस्य निशेषम प्रभावम ब्रूते, जो इस नमोकार मंत्र के संपूर्ण प्रभाव को बताना चाहता है, स अनिलार्दित मन्ने, मैं समझता हूं उसको वात की भयंकर पीड़ा हो गई है, यानी उसके शरीर में कोई ऐसा प्रकोप हो गया है कि वो उस बीमारी में बड़बड़ा रहा है। ये अभिप्राय है आचार्य महाराज का। अभिप्राय ये है कि नमोकार की महिमा को कोई बता नहीं सकता, नमोकार के प्रभाव का वर्णन कोई कर नहीं सकता। वो वस्तुतः उसका जो पूर्ण प्रभाव है वो केवल ज्ञान गम्य है। इतना अद्भुत मंत्र है। फिर 7 अक्षर की जो विधि थी, फिर और इसमें कुछ नमोकार के कुछ फलों का वर्णन किया है यहां पर, वो भी आप सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि अपन नमोकार की जब भक्ति पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं तो फिर ये भी पढ़ने योग्य है। अनेनैव विशुद्ध्यन्ति जंतव पाप पंकिता, अनेनैव विमुच्यन्ते भव क्लेशान मनीषिणः। इसी के द्वारा पाप रूपी कीचड़ से लिप्त संसारी प्राणी स्वच्छ हो सकते हैं, और इसी के द्वारा ज्ञानी जन संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। असावेव जगत्यस्मिन् भव्यव्यसन बांधव अमुम विहाय सत्वानां नान्य कश्चित कृपा पर। क्या सुंदर बात लिखी है। इस जगत में भव्य जीवों को संकट के समय एक यही मंत्र है जो स्थापित किए हुए संबंध का निर्वाह करता है। समझना बात को। जिस भव्य ने नमोकार से अपना श्रद्धात्मक संबंध स्थापित कर लिया, उस स्थापित संबंध को यही नमोकार भव्य जीवों के संकट के समय निभाता है, और अमुम विहाय इस नमोकार को छोड़ करके स्वत्वानाम संसारी प्राणियों के लिए अन्य कश्चित कृपा पर है न, अन्य कोई भी कृपा करने में परायण नहीं हो सकता। यानी नमोकार ही संसारी प्राणियों के लिए एकमात्र कृपा करने वाला है और कोई सहारा नहीं है। एतद् व्यसन पाताले भ्रमत संसार सागरे अनेनैव जगत सर्व मुद्रित्य विधृतं शिवे। इस संकटों के नरक स्वरूप चार गतियों के भ्रमण रूप संसार रूपी सागर में इसी ढमोकार ने संपूर्ण जगत को बाहर निकालकर कल्याण में स्थापित किया है। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुं मंत्रं समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। हजारों पाप करके सैकड़ों जीव जंतुओं का वध करके मरण काल में इसी मंत्र की भली भांति आराधना करके सिंह आदिक क्रूर तिर्यंच भी देवगति को प्राप्त हो चुके हैं। महावीर स्वामी का ही साक्षात उदाहरण है। गुरुपदेश से वो सम्यक दृष्टि और व्रति बन गए और बस वो उपदेश में एक नियम होता है कि वो नमोकार मंत्र बोलते ही हैं गुरुजन, और गुरु मुख से नमोकार मंत्र सभी श्रोता सुनते हैं। तो सिंह के लिए तो विशेष रूप से श्रीधर केवली के चरण मूल से दो ऋषि चारण रिद्धिधारी अवधिक ज्ञानी मुनिराज संबोधन के लिए आए थे, और जब उस सिंह को संबोधन दिया था तब उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और मिथ्यात्व गल करके पृथक हो गया था, हृदय में सम्यक्त का स्थान उत्पन्न हो गया था। और फिर बस इसकी आराधना से ही वो तिर्यंच भी, कई तिर्यंचों के उदाहरण आते हैं, हिंसा करने वाले तिर्यंच भी देव गति को प्राप्त हो गए। अब मुनि को नमोकार की आराधना का क्या फल प्राप्त होता है उसके विषय में लिखा है। शतमष्टोत्तरंचास्य त्रिशुद्ध्या चिंतयन मुनि भुंजानोपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्। यदि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अर्थात काय गुप्ति के साथ वचनों के बहिर मौन पूर्वक, अंतर मौन न रखते हुए अंतर में तो नमोकार मंत्र की आराधना कर रहे हैं, और मन में आर्त रौद्र ध्यान न करते हुए, वैसे रौद्र ध्यान तो मुनि की भावलिंग वाली अवस्था में नहीं होता, यानी छठे गुण स्थान से रौद्र ध्यान समाप्त हो जाता, पंचम तक हो सकता है। तो साधु परमेष्ठी रौद्र ध्यान से रहित होते हैं। तो कोई भी जो आर्थ ध्यान भी दुर्ध्यान है ना, उससे रहित होकर यानी मन वचन काय से निर्मल होकर जो साधु 108 बार नमोकार मंत्र को ध्याते हैं। अब ध्याते हैं का अभिप्राय यह है, वो कंज ध्यान कहलाता, षट कमल ध्यान, छह कमल बना करके नमोकार का ध्यान किया जाता है। शीर्ष कमल, भाल कमल, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ऐसे छह कमल बना करके नमोकार का ध्यान किया जाता है। तो जो साधु 108 बार नमोकार का ध्यान करते हैं, पहले ऊपर वाले कमल में 9 बार नमोकार मंत्र, फिर भाल कमल में 9 बार नमोकार मंत्र, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल और नाभि कमल, छहों कमलों में 9-9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे और उसमें बीच में एक कर्णिका होगी और 8 पंखड़ी होंगी। तो कर्णिका का 1 और फिर 8 उसमें जोड़ देंगे तो 9, तो ये 54 बार नमोकार मंत्र होगा। फिर नीचे से वापस ऊपर की ओर आएंगे तो नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, भाल कमल और शीर्ष कमल, ऐसे 108 बार जो साधु नमोकार का ध्यान करते हैं। तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, भुंजानोपी, उस दिन उन्होंने उपवास न भी किया हो, भोजन किया हो, तो भोजन करते हुए भी चतुर्थस्य अविकलम फलम प्राप्नोति, एक उपवास का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो इसी ग्रंथ में वो ओंकार को जोड़ करके जो 7 अक्षर थे, नमो अरहंताण, उसमें प्रारंभ में ओम लगा करके एक ऐसी विधि दी हुई है कि उस विधि से नमोकार की आराधना करने पर 6 माह में एक घटना होती है, फिर 1 वर्ष में घटना होती है, फिर तीर्थंकर का मुखड़ा उन योगी को यहां भरत क्षेत्र से दिखने लग जाता है, वहां तीर्थंकर वहां विराजमान है विदेह क्षेत्र में, पंचमेरु संबंधी जो पंच महाविदेह हैं उसमें 5 मेरु की पूर्व दिशा में, प्रत्येक मेरु की पूर्व दिशा में 2-2 तीर्थंकर हैं, 16 विदेह हैं और उनमें 2 स्थानों पर तीर्थंकर हैं, और पश्चिम में भी इसी प्रकार 2 स्थानों पर 2-2 तीर्थंकर हैं, पश्चिम में भी 16 विदेहों में 2 तीर्थंकर हैं। तो इस प्रकार एक एक मेरु संबंधी जो महाविदेह हैं उन महाविदेहों में पूर्व विदेहों में 2-2 और पश्चिम विदेह में 2-2, ऐसी गणना करने पर पूर्व के 10 तीर्थंकर हो जाएंगे 5 विदेह संबंधी और पश्चिम के 10 तीर्थंकर हो जाएंगे। तो 10 और 10 20, ये 20 तीर्थंकर सर्वकाल विद्यमान है। अगर एक मोक्ष भी चले जाए तो फिर उसी समय कोई अन्य तीर्थंकर प्रकृति के उदय को प्राप्त हो जाएंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर पद में विराजमान हो जाएंगे समावसरण सहित। हो तो 20 से कम कभी भी तीर्थंकरों की संख्या हो नहीं सकती। और वैसे देखा जाए तो एक महाविदेह में 32 विदेह होते हैं, मेरु की पूर्व दिशा में 16, पश्चिम दिशा में 16, और यदि सारे विदेहों में तीर्थंकर होंगे तो पंच मेरु संबंधी 32 32 विदेहों की अगर अपन उनको गुणित करें, गणना करें, तो 160 विदेह हो जाते हैं। 5 महाविदेह में 160 विदेह क्षेत्र होते हैं और उन विदेह क्षेत्रों में 6 खंड होते हैं और वही वैताड्य पर्वत वहां पर भी होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत है ना, वैसे ही वहां भी होते हैं, और 3 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड वहां भी होता है जैसे यहां पर है। तो वहां के आर्यखंडों में तीर्थंकर होते हैं और वहीं उनका विहार होता है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतते हैं, अब केवल अपने यहां वर्तमान के 24 तीर्थंकरों में तीन ऐसे तीर्थंकर थे जो छहों खंड में घूम करके आए थे, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती जो होते हैं वो षटखंड के विजेता होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को नम्रीभूत करने वाले। तो ये 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, और अधिकतम तीर्थंकर अगर सभी विदेह क्षेत्र भरे हों तो 160 तीर्थंकर हो जाएंगे। और यदि उस काल में, अब जितने मेरु है उतने ही भरत है और उतने ही ऐरावत भी है, तो अगर उस काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र 5 मेरु है तो 5 भरत और 5 ऐरावत है, तो ये 10 क्षेत्र और हो गए, 5 भरत और 5 ऐरावत, 5 और 5 10। तो ऐरावत मेरु की उत्तर दिशा में और भरत क्षेत्र मेरु की दक्षिण दिशा में, और दोनों ही समुद्र तटों पर है। विदेह क्षेत्र बिल्कुल मध्य में है, भले ही विदेह क्षेत्र का पूर्व भाग और अत्यंत पश्चिम भाग समुद्र तट पर हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था है, अनादिकालीन व्यवस्था है। तो यदि सारे के सारे क्षेत्र भरे हों, यानी कोई भी क्षेत्र तीर्थंकरों से रिक्त न हो, तो एक काल में युगपत अर्थात एक साथ 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। अपन ने 7 प्रकार के केवलियों में तीर्थंकर केवलियों का वर्णन कल पढ़ा था, और तीर्थंकर केवली वो होते हैं जो देव असुर मानव दानव सबके द्वारा की जाने वाली बड़ी भारी कल्याणकों की पूजा के अर्ह होते, अर्ह अर्थात योग्य। पंच कल्याणक के योग्य जो होते हैं वो अरहंत तीर्थंकर कहलाते हैं, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके 5 कल्याणक नहीं होते, वो तीर्थंकर भरत और ऐरावत में नहीं जन्म लेते। विदेह क्षेत्र में कुछ ऐसे तीर्थंकर होते हैं जिनके 3 अथवा 2 कल्याणक होते हैं, 4 कल्याणक कभी नहीं होंगे किसी के, 1 कल्याणक कभी तीर्थंकर का नहीं होगा, कम से कम 2 कल्याणक होंगे, अधिक से अधिक 5 कल्याणक होंगे, और मध्य में 3 है। वो कैसे? तो उसका समाधान ऐसा है कि जैसे यहां भरत और ऐरावत क्षेत्र में वो जीव तीर्थंकर बनते हैं जो अपने पूर्व मनुष्य भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध चुके हैं, उस पुण्य को अर्जित कर चुके हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का संचय कर चुके हैं, 16 कारण भावना उन्होंने अपने पिछले मनुष्य भाव में भाई है, तो वो इस भाव में आकर के तीर्थंकर बने। ये उनका तीसरा भाव है, क्योंकि मनुष्य भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध कर जिनको मुक्ति उस भाव से नहीं होती, वो नियम से तीसरे भाव में तीर्थंकर बनते हैं। अब जिन्होंने तीर्थंकर पुण्य का संचय नहीं किया वो यहां मनुष्य पर्याय में आ चुके हैं विदेह क्षेत्र में, और वो दीक्षा से पहले तीर्थंकर प्रकृति का संचय कर लेते हैं, और ये पर्याय उनकी अंतिम पर्याय है, उनको इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना है। तो जब दीक्षा के समय वो जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होंगे, उनके असारता का चिंतन करेंगे, दीक्षा का संकल्प करेंगे, तब लोकांतिक देव आ जाएंगे, इंद्र आदि भी उपस्थित होंगे और उनका दीक्षा कल्याणक मनाएंगे। सर्वोत्कृष्ट महापुण्य है तीर्थंकर नाम कर्म, संचित कर लिया। अब उसका प्रदेशोदय तो अंतर्मुहूर्त में प्रारंभ हो जाएगा, उसके साथ बंधी हुई साता आदि महान पुण्य प्रकृति उच्च गोत्र वगैरह सब आत्मा के प्रदेशों में रहेंगी, और बस वो प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, बस यही कह सकते हैं। और कुमुद चंद्र आचार्य महाराज ने तो यही कह दिया है कि भाई महान आत्माओं के विषय में अपन ना बोले वही अच्छा है। वो है उनका प्रभाव जो है वो वचनातीत है, बस इतना ही समझ लो, कोई उसका बखान नहीं कर सकता। तो उनका दीक्षा कल्याणक होगा, भव्य दीक्षा कल्याणक होगा, जैसा यहां पर तीर्थंकरों का होता है वैसे ही वहां पर उनका होगा। और यदि कोई ऐसे मानव हैं, वो क्षत्रियों के कुलों में ही होंगे, जो दीक्षा के बाद 16 कारण भावना पाते हैं, तीर्थंकर पुण्य का संचय करते हैं, तो फिर जब उनको केवल ज्ञान होगा तब वो कल्याणक मनाने के लिए चतुर्निकाय देव आदि सब उपस्थित हो जाएंगे और उनका केवल ज्ञान मनाया जाएगा, और अंत में मोक्ष कल्याणक तो मनाना ही है सबको, देवों को। तो इस तरह कम से कम 2 कल्याणक, जो दीक्षा के बाद तीर्थंकर पुण्य का संचय करेंगे उनके 2 कल्याणक होंगे, दीक्षा के पहले कर लेंगे तो फिर उनके 3 कल्याणक होंगे, और पूर्व भाव में अगर तीर्थंकर प्रकृति का संचय कर लिया तो 5 कल्याणक होंगे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो नमो अरहंताणम, अगर अरहंताणम की छाया अपन अरहद्भ्यः करते हैं, यानी ह के ऊपर अगर रेफ होती है संस्कृत में, तो फिर वो तीर्थंकर वाचक है, बस इतना स्मरण में रखना है अपने को। और इसकी आराधना की 3 विधियों पर अपन ने चर्चा की, 3 वृत्तांत अपन ने देखे। एक तो ज्ञानार्णव में इसमें ओंकार को प्रणव बीज, ओंकार को प्रणव बीज कहते हैं, ह्रीमकार को माया बीज कहते हैं, क्लीन को काम बीज कहते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के बीजाक्षर होते हैं। मंत्र की जो संरचना होती है, मंत्र की जो आराधना होती है, उसमें बीजाक्षर, शरीर और अंत में पल्लव भी होता है। तो पल्लव में नमः भी होता है, स्वाहा भी होता है, वशट भी होता है, संवोषट आदि बहुत सारे पल्लव होते हैं, और इधर बीजाक्षर में ओम राम रीम रूम रौम रह, क्लीम श्रीम अरहम, ये सारे बीजाक्षर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो एक एक बीजाक्षर के भी ध्यान की विधियां बताई है शास्त्रों में, लेकिन यहां पर ओम नमो अरहंताणम, नमोकार के प्रथम पद के साथ प्रणव बीज को जोड़ करके ओम नमो अरहंताणम, प्रणव का अर्थ ओंकार है, उसको जोड़ करके फिर जो साधना की जाती है ज्ञानार्णव में, उसका थोड़ा विस्तृत वर्णन है। तो ऐसे मुनिराज को 12 माह के उपरांत वो अखंड ध्यान की साधना करते रहे, तो उनको विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों के मुख का दर्शन हो जाता है। और साक्षात दर्शन करने के लिए फिर अगर कोई और शक्तियां प्राप्त हो जाए उनको, अथवा कोई पूर्व भव के परिचित अथवा वर्तमान भव के प्रभावित देव उनको वहां ले जाए तो शक्य है, पर वो देव ऐसे हों जिनका अवधिक ज्ञान वहां तक जाता हो, क्योंकि देवों के अवधिक ज्ञान भी संख्यात अथवा असंख्यात योजन प्रमाण होते हैं। सबसे कम कम अवधि ज्ञान जो होता है देवों में वो 25 योजन होता है, कम से कम 25 योजन का अवधि ज्ञान देवों के पास होता है। 1 योजन 13 किलोमीटर का है, तो 13 को 25 से गुणा कर दीजिए, तो उतने किलोमीटर का अवधि ज्ञान छोटे से छोटे देव के पास होता है। ग्यारह सौ 7 किलोमीटर अथवा 7 योजन के परिमाण में भी अंतर बताते हैं। कुछ लोग 12 किलोमीटर का 1 योजन भी मानते हैं, तो अगर 13 किलोमीटर का एक योजन माना जाए तो 325 किलोमीटर तक का अवधिक ज्ञान छोटे से छोटे देव का होगा, और अगर 12 का माना जाए तो 300 किलोमीटर का अवधि ज्ञान होगा, 325 अथवा 300 किलोमीटर का। तो देवों के माध्यम से भी वहां जाया जा सकता है विधि क्षेत्र, अथवा जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में आता है कि वो अपने पैरों में कोई एक औषध लेप लगाते थे तो उससे फिर वो आकाश गमन करते थे, तो ऐसा भी वर्णन है। पर अभी काल जो है बहुत व्यतीत हो चुका है, न जाने कितना समय गुजर चुका है पंचम काल का। अभी तो क्या था कि सन 1973-74 का जो समय था उस समय सब समाज के लोगों ने एक अवधि स्वीकार की कि महावीर भगवान 2500 साल पहले मोक्ष गए हैं, ऐसा उन्होंने सबने एक मत करके स्वीकार किया, दिगंबर श्वेतांबर सभी ने। पर जब अपन शास्त्रों में देखते हैं ना, तो शास्त्रों में गणित की अपेक्षा से देखने पर अथवा कालावधि की अपेक्षा से देखने पर अपने को 5 कालावधियां मिलती है। महावीर भगवान कब मोक्ष गए तो उसमें अलग अलग 5 प्रकार के समयों का उल्लेख मिलता है, और फिर अंत में आचार्य लिखते हैं कि भाई ये 5ों वर्णन मिल रहे हैं, 5ों काल मिल रहे हैं, अब इसको जाने बिना हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करते, ये जान करके ही इसका निर्णय लिया जा सकता है। तो ये तो ऐसी स्थिति बनी थी उस समय कि जैनेतर लोग पूछते थे कि तुम्हारे महावीर स्वामी कब हुए थे बताओ, तो फिर उनको उत्तर देना बहुत आवश्यक था। तो फिर सब लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि 2500 साल पहले हुए थे। फिर दिगंबर श्वेतांबर और सब विद्वानों ने, जुगल किशोर मुख्तार जी ने ज्यादा उसमें एक भूमिका निभाई थी, और फिर एक क्षुल्लक जी कह रहे थे कि नहीं उससे भी कम काल हुआ है, उनने भी एक पुस्तक निकाली थी कि 2500 वर्ष से भी अल्प अवधि हुई है महावीर स्वामी को, फिर उससे अधिक अवधि का भी वर्णन मिलता है। अब उसकी चर्चा अपन कभी देखेंगे, अभी नमोकार की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें अपन ये देख रहे हैं कि एक ऐसी साधना है ओम नमो अरहंताणम की, जिससे तीर्थंकर के मुख का दर्शन हो जाता, बहुत बड़ी बात है। मुख का दर्शन मिल जाए तो कम है क्या? अब यहां जीवन भर अपने को दर्शन नहीं मिल रहा, तो उसकी अपेक्षा से विचार करो कि जिनको मुख का दर्शन मिल रहा है वो कितने धन्य भाग्य साधु हैं। फिर दूसरी अपन ने एक घटना सुनी थी नमोकार की, वो सुभग गोपाल की, जो गुरु के मुख से चारण रिद्धिधारी ऋषि के मुख से नमो और अंताणम सुन करके उनका भक्त हो गया, और फिर उसने जीवन भर हर काम नमो और अंताणम बोलकर ही किया। जब मरने की स्मरण काल आ गया तब भी उसने अंत में नमोकार मंत्र ही बोला था, और मरण को प्राप्त होकर वो सेठानी का पुत्र बना, और सेठ वृषभ दास के घर में वो सुदर्शन नामक पुत्र बनता है, सुदर्शन सेठ बनता है, फिर सुदर्शन मुनिराज होते हैं, फिर पाटलिपुत्र से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, एक भवावतारी हो जाते हैं। फिर नमोकार का एक तीसरा वृत्तांत अपन ने ही सुना था पहले पद के बारे में, वो ये था, अपन ने मूलाचार ग्रंथ में पढ़ा था कि बड़े बड़े श्रुत केवली और शक्ति संपन्न मनोबल से युक्त साधु भी तम्मी देसी आले, उस स्थान पर जहां संलेखना हो रही है उनकी और उस समय पर जहां अंतिम सांसें चल रही है, द्वादशांग का चिंतन नहीं कर पाते, तो उस समय कौन सहारा होता है उनका? एकम्य विधिम्य पदे, एक पद में अथवा दूसरे पद में अपना ध्यान लगाते हैं, नमोकार भी पूरा नहीं कर पाते, वो काल ही नहीं उतना, सांस सीमित रह गई, अब एक नमोकार के लिए भी समय नहीं बचा, तब क्या करते हैं? तो बोले सत्तखर सज्जाणम अरहंताणम नमोत्ति भावेण जो कुणदि अनंड मदि सो पावदि उत्तम ठाणम, जो केवल 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान लगाते हैं, णमो अर्हंताणम, और भावेण श्रद्धा के साथ और अनन्यमति होकर, उनकी बुद्धि कहीं भटकती नहीं, एकाग्र होकर के जो केवल 7 अक्षरों का ध्यान करते हैं, अभी अर्थ का ध्यान करने के लिए समय नहीं बचा, केवल अक्षर पर्याप्त है, वो अक्षर अपने आप में बहुत पवित्र है। उन 7 अक्षरों का ध्यान करने वाले साधु सो पावधि उत्तम ठाण, उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो नमो अरहंताणव, इस पद का विवेचन अपन ने सुना था। एक अर्थ तो उसमें तीर्थंकर भगवान निकल रहे थे, और दूसरा जो अर्थ निकला था अरहंताणव, तो उसमें हन धातु का प्रयोग है, हनन करना, और र का हनन करने वाले अरहंत कहलाते हैं। वो पहले वाले जो अरहंत थे वो क्या थे? वो कल्याणकों की पूजा के अर्ह, अर्ह का अर्थ योग्य, और अर्हणा का अर्थ पूजा भी होता है। पंच कल्याणकों से जो पूजित होते हैं उनको अरहंत कहते हैं, अथवा जो पंच कल्याणकों की पूजा के योग्य होते हैं वो अरहंत कहलाते हैं। तो अर्ह शब्द से योग्य अर्थ भी लेना, अर्हणा शब्द से पूजा अर्थ भी लेना, तो जो पंच कल्याणकों से पूजित होते हैं वो अरहंत, अथवा जो पंच कल्याणकों की पूजा के योग्य होते हैं वो अरहंत, तो वो दोनों तीर्थंकर ही हैं। पंच कल्याणक उत्कृष्ट की अपेक्षा, मध्यम की अपेक्षा 3 कल्याणक, और जघन्य की अपेक्षा 2 कल्याणक, लेकिन ये महाकल्याणक होते हैं, बहुत बड़े कल्याणक होते हैं। कल्याणक का अर्थ होता है उत्सव, बहुत बड़े भारी उत्सव होते हैं। और उत्सव का नाम कल्याणक क्यों रखा? क्योंकि उस उत्सव में अनेक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, तो मिथ्यात्व से सम्यक की प्राप्ति होना महोत्सव हुआ कि नहीं, इसलिए उसको कल्याणक कहते हैं। और सम्यक से बढ़कर संसार में कोई दूसरा कल्याणकारी नहीं है, इसलिए कल्याणक। अब ये कल्याणक वहां नंदीश्वर पर्व में भी, नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवलोग जो उत्सव करते हैं उसको भी कल्याणक कहा गया है। नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यम करंती, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा ना नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में, कि वो चतुर निकाय देव परिवार सहित नंदीश्वर महाकल्याणक की पूजा करते हैं, ऐसा लिखा है 52 जिनालयों की। और 5616 उन 52 जिनालयों में 108 गर्भालय होते हैं एक एक जिनालय में, और एक एक गर्भालय में ज्ञानमती माताजी ने, पूज्य गणनी माताजी ने त्रिलोकसार की टीका से पढ़ करके सुनाया था कि एक एक गर्भालय में एक एक जिन होते हैं, एक एक जिन बिंब होते हैं, एक एक चैत्य होता है। तो वैसी गणना करो तो 52 को 108 से गुणित करिए तो 52 × 108 5616 5616 जिन बिंब होते हैं, उन सबका भव्य अभिषेक भव्य पूजन वो करते रहते हैं सारे देव। और 6-6 घंटे तक एक दिशा के जिनालय, 13 जो 13 जिन मंदिर है एक दिशा में, अंजन दधिमुख रतिकर, अंजनगिरी एक एक है, दधिमुख 4-4 है, और रतिकर 8-8 है प्रत्येक दिशा में, तो कुल मिलाकर के 13 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 6 घंटे में उन 13 जिनालयों की अभिषेक और पूजा संपन्न करते हैं, जयमाला भी करते हैं, नृत्य गान सब कुछ करते हैं 6 घंटे तक, और फिर 6 घंटे इधर 6 घंटे उधर 6 घंटे चारों दिशाओं में, ऐसे 13-13 जिन मंदिर हैं। तो तो चारों दिशाओं में छह छह घंटे लगा देते हैं वो इंद्रादि देव। अब आप सोचो कि कितने घंटे हुए, 24 घंटे हो गए, अब क्या करेंगे? तो वहां पर विश्राम गृह भी बने हुए हैं देवों के, तो फिर भी सौधर्म इंद्र तो विश्राम नहीं करता, वो फिर दूसरे दिन की वो पूरी विधि प्रारंभ कर देता है, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, ऐसे 8 दिनों तक, 64 प्रहरों तक, 64 को 3 से गुणा कर दीजिए, 192 घंटों तक वो भक्ति करते हैं। इसीलिए सौधर्म इंद्र को भक्त शिरोमणि माना गया है। संपूर्ण जगत में सौधर्म इंद्र के बराबर भक्ति करने वाला, उस ठाट के साथ, उस वैभव के साथ, उस रुचि के साथ, उस तन्मयता के साथ भक्ति करने वाला कोई अन्य नहीं है। और सौधर्म इंद्र पूर्व भव के एक महामुनि होते हैं। कोई गृहस्थ सौधर्म इंद्र नहीं बन सकता, कोई अत्यंत दुर्लभ महामुनिराज ही सौधर्म इंद्र बनते हैं और जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं। असंख्यात पंच कल्याणकों में वो अगुआ होते हैं, प्रधान होते हैं। इसीलिए जब यहां पर इंद्रोहम निज भूषण ऐसे करके जो काव्य पढ़कर अपने आप में इंद्र की स्थापना करते हैं, तो इंद्र के असंयम की स्थापना नहीं करते। व्रती लोग भी इंद्र बनते हैं, क्यों? वो भक्त शिरोमणि है, तो उसके गुणों की अपने में स्थापना करके फिर अपन भगवान का अभिषेक आदि करते हैं। इंद्र बने बिना अभिषेक नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो नमो अरहंताणम में तीर्थंकरों का वर्णन था। और तीर्थंकरों का अगर पृथक वर्णन करने चले जाएं तो फिर क्या होगा, उसके विषय में एक श्लोक है, हम आपको आगामी सत्र में सुनाएंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं। आज दोपहर में अपने पूज्य, अपने आराध्य, यहाँ पर श्रवण बेलगोला में जो चतुर्मास रत थे आचार्य गुलाब भूषण महाराज, गुलाब वाटिका में दिल्ली में उनकी दीक्षा हुई थी, तो फिर गुरु ने उनका नाम गुलाब भूषण रख दिया। और जब तक 11वीं प्रतिमाधारी थे वो, तब तक वो पूज्य नंग सागर महाराज श्री थे, फिर मुनि अवस्था में वो गुलाब भूषण मुनि हो गए, और फिर बाद में उनको आचार्य पद दिया गया, वो भी उन्होंने सरलता से स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर आचार्य महाराज ने उनको कड़क शब्दों में कहा कि मैंने आचार्य पद दिया है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? बोले कि गुरुवर, आप अपने आप स्वयं संस्कार करेंगे तो फिर मैं स्वीकार कर लूंगा। फिर उनने आचार्य पद स्वीकार किया। तो अभी अपन उनको आमंत्रित करते हैं, उनका एक आशीर्वाद यहाँ साक्षात जो प्रत्यक्ष अपने को मिलेगा वो समझ लीजिए इस वर्ष का तो अंतिम आशीर्वाद ही होगा। नमोस्तु आचार्य श्री।
नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
एक मिनट, हम बुला कर ला, पहले यहाँ पर अपन अर्घ चढ़ा लेते हैं, फिर आचार्य श्री को बुलाते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महंगजे जिन गृहे जिन सूत्र महंगजे जिन गृहे मुनिराज महंगजे ओम ह्रीं ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः। अस्याउषा देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।